नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात शबाना आज़मी और महेश भट्ट की करेंगे, साथ ही बात होगी फिल्म अर्थ की। एक ऐसी फिल्म जिसे क्रिटिक्स ने समय से बहुत आगे की फिल्म बताया था। 80 और 90 के दशक में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आज़मी बीते 5 दशक से फिल्मों पर राज कर रही हैं। उन्हें आखिरी बार फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो साल 2023 में आई, इसमें देखा गया। और इस फिल्म में उनका धर्मेंद्र के साथ एक किस सीन काफ़ी वायरल हुआ था। आपको बता दें कि लंबे समय बाद शबाना आज़मी ने अपने 5 दशक की जर्नी को लेकर खुलकर बात की और अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट संग काम करने के अपने अनुभव भी शेयर किए और फिल्म अर्थ पर खुलकर बात की। और इस इंटरव्यू में शबाना आज़मी ने अपनी फिल्मी जर्नी को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर की सबसे शानदार फिल्मों को लेकर बातें की जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इस लिस्ट में फिल्म अर्थ का नाम शामिल है जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। फिल्म अर्थ से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए इंटरव्यू में शबाना आज़मी ने कहा, अर्थ में मेरी भूमिका के लिए कोई अपना हाथ या पैर छोड़ सकता है। महेश भट्ट और मैं दोस्त थे और उन्होंने एक निर्देशक के रूप में मुझे इस फिल्म के लिए काफ़ी उत्साहित किया। ये ऐसा है जैसे कि वो एक बटन दबाए और मैं पात्र बन गई। खबरों की माने तो अर्थ फिल्म में शबाना आज़मी अपने रोल को लेकर एकदम श्योर थीं और वो ये अच्छी तरह समझ रही थीं कि हंगामा मचाएगा ये कैरेक्टर, और हुआ भी वही जो उन्होंने सोचा था। लेकिन लोगों को फिल्म के अंत को लेकर थोड़ी सी आपत्ति हुई। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप मेरी बात से खुद को जोड़ पाएंगे। शबाना कहती हैं कि जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने कहा कि ये फिल्म तो अच्छी है मगर अंत पर आपत्ति जताई। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का कहना था कि एक महिला अपने पति को माफ कैसे नहीं कर सकती जबकि वो माफी मांग रहा हो। शबाना कहती है, तब मैंने लोगों को समझाया कि हमने इसके अंत को बेहद शानदार तरीके से खत्म करना हम चाहते थे और उसी खास अंत को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई थी और इसके लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं। शबाना कहती हैं कि मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और ये भी एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस इंटरव्यू में शबाना आज़मी आगे कहती हैं कि आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि फिल्म अर्थ ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें हिम्मत दी है। ये एक छोटे बजट की फिल्म थी और मैंने जो कपड़े पहने थे उनमें से कई मेरे अपने कपड़े थे और इसकी कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, और जब हम शूटिंग कर रहे थे तब भी ये डेवलप होती रही फिल्म। शबाना आज़मी आगे बताती हैं कि कैसे महेश भट्ट ने उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक से बुला लिया था। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और तभी महेश भट्ट ने मुझे 10 मिनट में आने को कहा, और मैं उनके कहने के बाद जब मैं पहुंची तो पहुंचते ही एक टेलीफोन कॉल सीन की शूटिंग वहां पर शुरू कर दी और एक टेक्निकल रिहर्सल थी। मैं कांपने लगी क्योंकि फिल्म के लिए मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। फाइनली मुझे खुशी है कि मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा महेश चाहते थे। आपको बता दें कि शबाना आज़मी ने साल 1974 की फिल्म अंकुर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बनती रहीं और शबाना ने अपने हर किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाया। हर भूमिका में वो इस कदर जचती कि जैसे वो कैरेक्टर उन्हें ही सोच कर लिखा गया था। और ऐसा ही फिल्म अर्थ के साथ हुआ। अर्थ महेश भट्ट द्वारा निर्देशित साल 1982 की एक इंडियन ड्रामा फिल्म थी जिसमें शबाना आज़मी और कुलभूषण खरबंदा लीड रोल में थे और स्मिता पाटिल, राज किरण, रोहिणी हट्टंगडी जैसे कैरेक्टर सहायक भूमिकाओं में। इसके अलावा गजल जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की के कुछ सबसे यादगार साउंड ट्रैक इस फिल्म का हिस्सा हैं। अगर आपने फिल्म देखी है या फिल्म के गीत सुने हैं, आज भी अगर उन गीतों को आप सुनेंगे तो आप उससे खुद को जोड़ पाएंगे। मसलन एक गीत है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। अर्थ और आत्मकथानक फिल्म महेश भट्ट द्वारा परवीन बॉबी के साथ उनके जो संबंध थे उसको देखकर लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता था कि दरअसल ये फिल्म महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्तों पर आधारित है, दरअसल ये उन्हीं की कहानी है। और इस फिल्म को बालू महेंद्र द्वारा तमिल में भी बाद में 1993 में बनाया गया, जिसका नाम था मारुपादियुप्पु। और साल 1993 में तो ये बनी, लेकिन 2017 में पाकिस्तानी अभिनेता और निर्देशक शान शाहिद की अर्थ 2 रिलीज़ हुई और महेश भट्ट ने निर्माण के दौरान संरक्षक के रूप में काम किया। तो इस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ी, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि पूजा जो एक अनाथ लड़की के रूप में बड़ी हुई और हमेशा एक घर का सपना देखती थी, असुरक्षित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे और उसके पति इंदर को वो अपार्टमेंट छोड़ना होगा जो उन्होंने किराए पर लिया होता है। जब इंदर उसे एक नए घर की चाबियां देता है तो जो मोड़ आता है वो दोधारी साबित होता है, जब ये पता चलता है कि वो एक अन्य महिला कविता से प्यार करता है, जिसके साथ उसने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पैसा भी लगाया था। नया भवन, पहले जहां पूजा अपने पति से धोखा खाई नौकरानी को सलाह दे रही थी, वहीं अब पूजा खुद भी ऐसी ही स्थिति में फंस गई है। जब इंदर ने कविता के लिए पूजा को छोड़ दिया तो उसने केवल 2000 रुपयों के साथ एक महिला छात्रावास के लिए अपार्टमेंट छोड़ने का विकल्प चुना, जो उसके पास शादी के समय रुपए थे। अकेले व्यक्ति के रूप में जीवन की कठिनाइयों को पार करने, नौकरी ढूंढने और नैतिक रूप से खुद पर भरोसा करने में राज द्वारा उसकी मदद की जाती है। राज और पूजा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे कविता की मानसिक अस्थिरता उसके असुरक्षा के डर को गहरा कर देती है और यहां तक कि इंदर द्वारा पूजा से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करने के बाद भी। राज को पूजा से प्यार हो जाता है और वह उसे प्रपोज करता है। उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो खाली है और उसे कुछ नहीं दे सकती। राज उसे ये कहते हुए मनाने की कोशिश करता है कि वो अपना शेष जीवन अतीत के बारे में दुखी होकर नहीं बिता सकती और उसे अपने लिए एक नया जीवन खोजने की कोशिश करनी चाहिए। पूजा ने इसके बारे में सोचने का वादा किया। पूजा की नौकरानी, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी बेटी के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना था, उसने उसकी प्रवेश फीस के लिए 1000 रुपये बचाए। उसे पता चला कि उसके शराबी पति ने पैसे चुराए हैं। गुस्सा होकर वो सारे पैसे खर्च करने के बाद उसे अपने प्रेमी की बाहों में खोजने के लिए खोजती है। वो उसे मार देती है और पुलिस स्टेशन जाकर अपना अपराध कबूल कर लेती है। अपनी बेटी के बारे में चिंतित होकर वो पूजा को बुलाती है, जो बेटी की देखभाल करने का वादा करती है। कविता की माँ और उसके निजी डॉक्टर के आग्रह के बाद पूजा ने व्यक्तिगत रूप से कविता को आश्वासन दिया कि उसे अब इंदर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि पूजा का रवैया कविता को ये विश्वास दिलाता है कि पूजा की शादी तोड़ना एक गलती थी और अपने अपराध बोध और असुरक्षा की भावना से बचने के लिए वो इंदर से रिश्ता तोड़ लेती है। बाद वाला पूजा के साथ अपने रिश्ते को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है इंदर, लेकिन वो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। पूजा अपनी नौकरानी की बेटी के साथ रहती है और राज से शादी करने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसने स्वतंत्र होने और बच्चे की माँ बनने में जीवन का एक नया अर्थ पाया है और राज से शादी करने से वो केवल कमज़ोर होगी, इसलिए वो कमज़ोर नहीं रहना चाहती, वो फ्री होके अपनी लाइफ को जीना चाहती है और यही इस फिल्म का सार है। इस फिल्म में शबाना आज़मी पूजा मल्होत्रा के रूप में हैं और इंदर मल्होत्रा के रूप में हैं कुलभूषण खरबंदा, कविता सान्याल के रूप में हैं स्मिता पाटिल और राज के रूप में हैं राज किरण, पूजा की नौकरानी के रूप में रोहिणी हट्टगड़ी ने किरदार निभाया है, कविता की माँ का किरदार दीना पाठक ने निभाया है और कविता के डॉक्टर बने हैं ओम शिवपुरी, मजर खान हरीश के रूप में हैं इस फिल्म में, गुलशन ग्रोवर आपको गुलशन के रूप में दिखाई देंगे, दिलीप के कैरेक्टर में दिलीप ताहिल है, अपर्णा के रूप में गीता सिद्धार्थ और अनिल के रूप में सिद्धार्थ काग इस फिल्म में हैं। इसके अलावा इस फिल्म के जो गीत हैं वो बड़े लाजवाब और बेहद दिलचस्प हैं, मसलन कैफी आज़मी का लिखा और जगजीत सिंह का गाया झुकी झुकी सी नज़र, या फिर कैफी आज़मी का लिखा एक और गीत कोई ये कैसे बताए जगजीत सिंह की जादुई आवाज़ में, और जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और गाना है तेरे खुशबू में बेस, जिसे राजेंद्र नाथ रहबर ने लिखा है। और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, कैफी आज़मी का लिखा यह गीत है जिसे जगजीत सिंह ने आवाज़ दी है। चित्रा सिंह ने इस फिल्म में एक गाना गाया जो जगजीत सिंह की पत्नी की ज़िंदगी में तो नहीं, ये इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी का लिखा हुआ गीत है। और सारे गाने इसके बहुत सुपरहिट हुए, आज भी जब ये बजते हैं तो लोग खुद को इन गीतों से कनेक्ट करते हैं। साल 1982 में इस फिल्म में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का शबाना आज़मी उसके लिए नॉमिनेट हुई थी और उन्होंने जीता। और सर्वोत्तम संपादन का जो एडिटिंग का पुरस्कार था वो केशव हिरानी को नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का पुरस्कार भी मिला मधुकर शिंदे को, राष्ट्रीय जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है बंगाल की, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक में। और फिल्म फेयर पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीते जिसमें शबाना आज़मी को मिला, रोहिणी हट्टंगडी को मिला। स्मिता पाटिल मनोनीत हुई थी लेकिन वो इस पुरस्कार को जीत नहीं पाई, और महेश भट्ट भी नॉमिनेट तो हुए लेकिन जीत नहीं पाए। जीत की कहानी सिर्फ शबाना आज़मी के साथ जुड़ती है। फिल्म आपने ना देखी हो तो देखिएगा ज़रूर, और इस फिल्म के सबसे अच्छे गीतों में से आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।